पृष्ठ संख्या 147, अध्याय 7, महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के प्रति जागरूकता लाने में संचार माध्यमों की भूमिका। कार्य कुशलता, क्षमता, उत्पादकता एवं स्वास्थ्य परस्पर अंतः संबंधित हैं। राष्ट्रीय विकास के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र के सदस्यों का स्वास्थ्य स्तर उन्नत हो। एक स्वस्थ समुदाय उस अधिसंरचना को प्रदान करता है जिसके आधार पर तार्किक और आर्थिक रूप से समर्थ समाज का निर्माण किया जा सके। स्वस्थ मनुष्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूंजी है जिसके आधार पर मानवीय सुख की नींव पड़ती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि व्यक्ति की स्वास्थ्य की दशा किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, अपितु विभिन्न कारकों की परस्पर अंतःक्रिया की देन है। सामाजिक आर्थिक विकास एवं प्रगति का स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। एक ओर सामाजिक आर्थिक दशाएं व्यक्ति के स्वास्थ्य स्तर को प्रभावित करती हैं, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति के स्वास्थ्य स्तर के अनुरूप उस समाज के आर्थिक विकास एवं भौतिक प्रगति का रूप निर्धारित होता है। भारत की 3/4 महिलाएँ गाँव में निवास करती हैं। इन महिलाओं के स्वास्थ्य की देखरेख एक बुनियादी आवश्यकता है। आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ स्वास्थ्य को सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक माना है। ग्रामीण महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आज़ादी के तुरंत बाद सरकार ने जनोन्मुखी स्वास्थ्य नीति की योजना बनाई और वर्तमान में अपने विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं द्वारा ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा कर रही है। स्वास्थ्य से प्रसव पूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर सेवाओं सहित प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य योजनाओं को जारी रखने और इसका विस्तार करने में पहले से कार्य कर रही है। प्रचलित दाइयों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। उपकेंद्रों की स्थापना और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायक परिचायिकाओं और दाइयों को प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, किशोरी शक्ति योजना आदि योजनाओं को ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य रक्षण हेतु लागू किया गया। महिलाओं में कुपोषण की समस्या को सुलझाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है। 1000 की आबादी वाले प्रत्येक गाँव के लिए एक ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड का प्रावधान किया गया। ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सरकार चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा रही है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें से प्रमुख इस प्रकार से हैं। पृष्ठ संख्या 148, नंबर 1, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1953। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को किसी एक बीमारी के नाश के लिए चलाए गए बड़े कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस कार्यक्रम के परिणाम भी उल्लेखनीय रहे हैं। यह कार्यक्रम सन 1953 में प्रारंभ किया गया। सन 1961 ईस्वी में मलेरिया से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 50 तक आ गई, परंतु सन 1976 में यह संख्या पुनः 6.47 लाख पहुंच गई। अतः इस कार्यक्रम को मॉडिफाइड प्लान ऑफ एक्शन के रूप में पुनः प्रारंभ किया गया। नंबर 2, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का प्रारंभ सन 1955 ईस्वी में किया गया, परंतु 1970 ईस्वी में जब इसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम में स्थान मिला तो इसके क्रियान्वयन में तीव्रता आई। इस कार्यक्रम को कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन एक नेटवर्क के माध्यम से किया जाता रहा, जिसमें 708 कुष्ठ रोग नियंत्रण इकाइयां, 943 शहरी कुष्ठ रोग केंद्र, 252 जिला कुष्ठ रोग इकाइयां तथा 7400 MET केंद्र कार्यरत हैं। कुष्ठ रोग उन्मूलन के अंतर्गत मात्र कुष्ठ रोगियों का उपचार ही नहीं किया जाता, अपितु उनके सामाजिक तथा व्यवसायिक पुनर्वास का कार्यक्रम भी संचालित किया जाता है। नंबर 3, डायरिया बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम। डायरिया भारत में शिशु एवं बाल मृत्यु के उच्च रहने के प्रमुख कारणों में एक है। डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम में मुंह द्वारा पुनर्निर्जलीकरण के उपायों द्वारा निर्जलीकरण के कारण होने वाली मौतों को रोकने में विशेष बल दिया जाता है। इसके द्वारा ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इसका वितरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पतालों के माध्यम से किया जाता है। इसे निर्जलीकरण के कारण होने वाली मृत्यु को रोकने का एक कारगर उपाय पाया गया है। नंबर 4, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। TB या क्षय रोग नियंत्रण हेतु चलाया जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसका संचालन देश के 371 जिला TB अस्पतालों अथवा 344 TB सेंटर्स के माध्यम से किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, नंबर 1, TB मरीजों की पहचान करना अथवा उन्हें ढूंढना है, नंबर 2, उनका उपचार एवं नंबर 3, BCG वैक्सीन टीकाकरण द्वारा इसको रोकना। यह कार्यक्रम भारत के सफल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। 7 अप्रैल 2007 को अमर उजाला दैनिक अखबार के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि विश्व के 5000 लोग प्रतिदिन इस बीमारी के कारण मरते हैं। पृष्ठ संख्या 149। नंबर 5, अंधता निवारण राष्ट्रीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में सन 2000 तक अंधता का प्रतिशत 1.4 से 0.3 पर लाना रखा गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य हैं, नंबर 1, कैंप लगाकर एवं अस्पतालों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करना, नंबर 2, कुपोषण जनित दृष्टिहीनता रोकने के लिए विटामिन ए की खुराक उपलब्ध कराना, नंबर 3, दृष्टिहीन लोगों की दृष्टि बैंकों के माध्यम से दृष्टि प्रदान करना। इस क्षेत्र में स्वयं सेवा संस्थानों का योगदान विस्मरणीय है। वर्तमान में कैंप लगाकर मोतियाबिंद ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई है। नंबर 6, सर्व टीकाकरण कार्यक्रम 1978। इस कार्यक्रम का लक्ष्य टीकाकरण के द्वारा शिशु एवं बाल मृत्यु दर को कम करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाल्यावस्था में होने वाली प्रमुखता 6 बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाने का कार्य किया जाता है। यह बीमारियां हैं डायरिया, कुकर, खांसी, टिटनेस, TV, खसरा एवं पोलियो। वर्तमान में यह कार्यक्रम 1978 में टीकाकरण कार्यक्रम के नाम से आरंभ किया गया था, परंतु सन 1985 ईस्वी में इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नाम दिया गया। भारत में वर्तमान में 56% बच्चों को जन्म से 1 वर्ष के अंदर पूरी तरह टीकाकृत किया जाता है। भारत में सन 1995 ईस्वी से चल रहा पोलियो टीकाकरण अभियान पोलियो से लड़ाई का विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसे अभी तक सभी देशों के कुछ राज्यों में जहां पोलियो के कुछ केस मिले हैं अभी भी संचालित किया जा रहा है। इस अभियान में पोलियो की बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया है। सन 2003 में देश के 52 जिलों में 93 मामले मिले हैं। नंबर 6, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982। इस कार्यक्रम के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं, मानसिक रोगी की पहचान, उपचार एवं उपचार जारी रखने के लिए परिवार का सहयोग एवं प्रोत्साहन। देश के 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यह कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान बंगलुरु की तकनीकी मदद से चल रहा है। पृष्ठ संख्या 150। नंबर 8, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम सन 1999 ईस्वी में दूसरे चरण में आरंभ किया गया। इसके 2 मूल उद्देश्य हैं, नंबर 1, भारत में HIV के रोगियों की पहचान करना, नंबर 2, भारत में HIV से जुड़े रहने की क्षमता का विकास करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में राज्य एड्स नियंत्रण समितियों का गठन किया गया है। भारत में 1998 में HIV संक्रमितों की संख्या 35 लाख थी, जो 2002 में बढ़कर 45.8 लाख हो गई। नंबर 9, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख लोग कैंसर के शिकार होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में इसका पता चलने पर लोगों को मौत के मुंह से बचाया जा सकता है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों का विकास किया जा रहा है। जिला स्तर पर कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। देश के 20 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को परामर्श शोध केंद्रों के रूप में मान्यता दी गई है। नंबर 10, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983। यह नीति 1983 ईस्वी में संसद में प्रस्तुत एवं संसद द्वारा अनुमोदित की गई। इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य रखा गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भारत के स्वास्थ्य नीति में एक मील का पत्थर है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य भारत में जनसाधारण को अधिकतम संभव स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नंबर 11, जननी सुरक्षा योजना 2003। इस योजना का शुभारंभ 11 अप्रैल 2003 को स्वर्गीय कस्तूरबा गांधी को जन्मदिन पर किया गया। इस योजना का लक्ष्य मातृत्व मृत्यु दर, बच्चों को जन्म देते समय होने वाली माता की मृत्यु को जो वर्तमान में 407 प्रति लाख है, कम करना है। इस योजना के प्रमुख बिंदु हैं, नंबर 1, बच्चों को जन्म देने के लिए सरकारी अस्पतालों में आने वाली महिलाओं को आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जाए। यह धनराशि बालक के जन्म पर 500 रुपये एवं बालिका के जन्म पर 1000 रुपये दी जाएगी। यह योजना 100% केंद्र पोषित योजना है। नंबर 12, अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम। ऊपर वर्णित दिए गए कार्यक्रमों के अतिरिक्त भी भारत में कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नवत हैं। पृष्ठ संख्या 151, आ राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1995 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। देश के 20 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इनके मामले मिले। 5.3 करोड़ लोगों को खुराक दी गई है। ब राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। सन 1977 ईस्वी में परिवार कल्याण नीति से परिवार नियोजन के स्थान पर सरकार ने परिवार कल्याण पर बल देना आरंभ किया और इस कार्यक्रम को अधिक मानवीय, उपयोगी एवं व्यापक बनाया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक एवं सुधरा हुआ रूप है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का संबंध परिवार के आकार को सीमित रखने से है, जबकि परिवार कल्याण के अंतर्गत परिवार को अपनी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रदान की जाने वाली सभी प्रकार की सहायता, निर्देशन एवं सहयोग आते हैं। परिवार के सम्मुख अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, यथा भोजन एवं पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, आवास, पारिवारिक विघटन आदि। परिवार कल्याण के अंतर्गत वे सभी सेवाएं सम्मिलित हैं जो इन सभी कठिनाइयों का समाधान करने में सहायता करती हैं। सा राष्ट्रीय संचार रोग निगरानी कार्यक्रम 1996-97। प्रयोग के तौर पर यह कार्यक्रम 5 राज्यों केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा व गुजरात के एक एक जिले में चलाया गया। वर्ष 2002-03 में यह 18 राज्यों के 101 जिलों में लागू है। महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाने में जन संचार माध्यमों की भूमिका संबंधी अध्ययनों में रेडीवान जन संप्रेषण तकनीक के विशाल प्रयोग द्वारा जनित वैश्विक एकरूपता और सांस्कृतिक ऐतिहासिकता के संभावित परिणामों पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि नैतिक, धार्मिक, स्वास्थ्य पूरक और सौंदर्य बोध के दृष्टिकोण से वर्तमान की नए वैश्विक संस्कृति के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं को इंगित किया जा सकता है। बलाटम 2003 का अध्ययन मिश्रित पद्धति शोध रणनीति प्रारूप के निष्कर्ष और परिणाम को प्रतिवेदित करता है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक नेटवर्किंग की संभाव्यता का आकलन है। इस शोध आलेख में जिन समंकों को प्रतिवेदित और विश्लेषित किया जाता है, इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, घरेलू खर्च, कृषि मूलक बाजार और शोध मूल्य अथवा मूल्य शोध, कृषि मूलक समस्याओं एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर सूचना के प्रयोग व उपलब्धता और संप्रेषण मीडिया प्रयोग, कम्युनिकेशन मीडिया प्रयोग सम्मिलित हैं। यह अध्ययन सुअवसरों के वर्णन हेतु अनुमति प्रदान करता है, जिसे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ICT द्वारा सूचना पहुंच योग्य बनाने के लिए किया जा सकता है। यह शोध आधारभूत संप्रेषकीय प्रौद्योगिकी के महत्व को प्रदर्शित करता है। यह प्रासंगिक सूचना सेवाओं की आवश्यकता, महत्ता एवं उपलब्धता को भी प्रदर्शित करता है और इस क्षेत्र में व्यापक अनुमोदनों को प्रस्तुत करता है। पृष्ठ संख्या 152। गोल्डनर 2006 का अध्ययन यह दर्शाता है कि कैसे किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति इस बात को प्रभावित करती है कि वह किस तरह की स्वास्थ्य जानकारी इंटरनेट से ढूंढता है। आंकड़ों से लगता है कि व्यक्ति की स्थिति, किस तरह की स्वास्थ्य अथवा चिकित्सा जानकारी व्यक्ति इंटरनेट पर तलाश करता है, को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी के लिए संचार माध्यमों से इंटरनेट की सुविधा विशेष महत्व रखती है। वेंजरफेल्ट 2006, सूचना शासित समाज पारंपरिक मापकों की पकड़ में आने वाले सत्य से अधिक है। संप्रेषण माध्यमों की आधुनिक तकनीकी ने स्वास्थ्य संस्कृति को लचीला बनाया है एवं इससे जुड़े योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जन समुदाय तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। डेज 2006, विश्व स्तर पर आज मीडिया सिद्धांत 19वीं शताब्दी के प्रिंट मीडिया संस्कृति के 20वीं शताब्दी के इलेक्ट्रॉनिक संस्कृति व आज की 21वीं शताब्दी के डिजिटल संस्कृति के रूप में परिवर्तित होकर अच्छी तरह से प्रलेखित हो गया है। यह अध्ययन नेटवर्क्ड कंप्यूटरों, बहुजल प्रयोगी सॉफ्टवेयर और इंटरनेट की वृद्धिगत लोकप्रियता को डिजिटल संस्कृति को गतिशीलता तथा शक्तिकृत करने के रूप में अवलोकित करता है। डिजिटल संस्कृति को मूल्य, प्रथाओं अथवा प्रत्याशाओं के आविर्भूत पुंज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जहां व्यक्ति क्रिया व प्रतिक्रिया करता है, वह भी समकालीन नेटवर्क समाज के अंतर्गत। यह डिजिटल संस्कृति ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्रघटना के संदर्भ में एक तदजनित संपत्ति है, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के पूर्व निर्धारित विकास व प्रवृत्ति के साथ संबंध किया जा सकता है, जिसका तात्कालिक प्रभाव है और विशिष्ट रूप से उस तरीके को परिवर्तित करता है जिसका हम प्रयोग करते हैं, और वृद्धिगत अंतः संयोजित ऑनलाइन पर्यावरण में जीवन शैली, स्वास्थ्य संस्कृति व रहन सहन को अर्थ प्रदान करता है। पृष्ठ संख्या 153। हॉरिगन एवं अन्य का आकलन है कि सूचना और संप्रेषकीय प्रौद्योगिकी उद्योग का इंटरनेट प्रभाव 2007 तक 1.5 अरब प्रयोगकर्ताओं तक पहुँच कर अविकल्पित है। सामान्य ब्रॉडबैंड के रूप में अनुमोदित बहुसंख्यक वैकल्पिक प्रौद्योगिकी आज व्यापक स्तर पर यूनाइटेड स्टेट्स से परे प्रभावी ढंग से प्रयोग होता है। यह शोध लेख व्यू इंटरनेट और अमेरिका लाइफ प्रोजेक्ट 2004 द्वारा सृजित अद्वितीय समंकों व तथ्यों को बहुतेरे राष्ट्रीय कारकों के प्रभाव से परीक्षण हेतु लाता है। ब्रॉडबैंड का उपयोगीकरण बड़े शहरों में व्यापक रूप से पाया जाता है, वह भी उन शहरों में जहां बड़ा टेली कम्युनिकेशन गहनीकृत आर्थिक क्षेत्र विद्यमान होता है। ब्रोमेन, हालांकि इंटरनेट ने अभी तक पारंपरिक सूचना स्रोतों का स्थान नहीं लिया है, लेकिन इससे हमारे संपर्क स्रोत को नवीन आयाम दिए हैं। स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण एवं संचालित योजनाओं के प्रति जागरूकता में इसकी अहम भूमिका है। प्रेम नारायण शर्मा 2007 का कथन है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जानकारी के कारण महिलाओं का स्वास्थ्य और उनका स्तर सुधरता है। संचार माध्यमों द्वारा महिलाओं की सामान्य जागरूकता बढ़ी है, उन्हें काफ़ी हद तक नई जानकारी और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं। उनके अनुसार स्त्रियों को अपनी स्थितियों के बारे में समझ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकतों की जानकारी, स्वास्थ्य, पोषण, प्रजनन अधिकार, साक्षरता तथा अपने चारों ओर की दुनिया के बारे में जागरूकता को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि लोगों को स्वास्थ्य मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ उनको राष्ट्रीय नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति जागरूक बनाने में जन संप्रेषण सूचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जन संप्रेषण लोगों को राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में भागीदार करने में मदद करता है। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए काम करती है, जिससे सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से जन जन की खुशहाली और उनके कल्याण के प्रोत्साहन दिया जा सके। इसके लक्ष्य में शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना है। महिलाओं में संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है। उत्तरदात्रियों से महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के प्रति जागरूकता लाने में संचार माध्यमों की भूमिका के प्रति जानकारी प्राप्त की गई है। प्राप्त जानकारी को विविध सारणियों में दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 154, हर गांव गली तक पहुंचे अच्छे स्वास्थ्य का उपहार, सभी रोगियों को मिले उत्तम और सस्ता उपचार। उत्तर प्रदेश सरकार का यह स्लोगन संचार माध्यमों द्वारा बढ़ावा देखा जाना। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से यह जानकारी प्राप्त की गई है कि हर गली गांव तक पहुंचे अच्छे स्वास्थ्य का उपहार, सभी रोगियों को मिले उत्तम और सस्ता उपचार। उत्तर प्रदेश का यह स्लोगन संचार माध्यमों द्वारा बढ़ावा देखा जाता है। उससे प्राप्त जानकारी को निम्नलिखित सारणी 7.1 में दर्शाया गया है। सारणी संख्या 7.1, हर गांव गली तक पहुंचे अच्छे स्वास्थ्य का उपहार, सभी रोगियों को मिले उत्तम और सस्ता उपचार। उत्तर प्रदेश का यह स्लोगन संचार माध्यमों द्वारा पढ़ावा देखा जाना। स्लोगन पढ़ावा देखा गया है। आवृत्ति प्रतिशत हाँ 220, 73.33, नहीं 80, 26.67, योग 300, 100। उपरोक्त सारणी 7.1 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 73.0% उत्तरदात्रियां यह मानती हैं कि हर गांव गली तक पहुंचे अच्छे स्वास्थ्य का उपहार, सभी रोगियों को मिले उत्तम और सस्ता उपचार। उत्तर प्रदेश सरकार का यह स्लोगन संचार माध्यमों द्वारा बढ़ावा देखा है, जबकि 26.67% उत्तरदात्रियां हर गांव गली तक पहुंचे अच्छे स्वास्थ्य का उपहार, सभी रोगियों को मिले उत्तम और सस्ता उपचार उत्तर प्रदेश का यह स्लोगन संचार माध्यमों द्वारा पढ़ा और नहीं देखा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 73.33% उत्तरदात्रियों के अनुसार हर गांव गली तक पहुंचे अच्छे स्वास्थ्य का उपहार, सभी रोगियों को मिले उत्तम और सस्ता उपचार उत्तर प्रदेश का यह स्लोगन संचार माध्यमों द्वारा पढ़ावा देखा है। सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से यह जानकारी प्राप्त की गई है कि सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से क्या आप परिचित हैं। उनसे प्राप्त जानकारी को निम्नलिखित सारणी संख्या 7.2 में दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 155, सारणी संख्या 7.2, सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। कार्यक्रम से परिचित हैं। आवृत्ति प्रतिशत हाँ 222, 64, नहीं छिहत्तर, 27, योग 300, 100। सारणी संख्या 7.2 में आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 64% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित हैं, जबकि 26% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 74% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं। आयु एवं सुरक्षित मातृत्व योजना के संबंध में संचार माध्यमों का प्रभाव। आयु के आधार पर संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित सुरक्षित मातृत्व योजना के संबंध में दृष्टिकोण का विश्लेषण सारणी संख्या 7.3 में किया गया है। सारणी संख्या 7.3 आयु एवं सुरक्षित मातृत्व योजना के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। आयु सुरक्षित मातृत्व योजना के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। योग हाँ नहीं 17 से 27, 38, 29, 67, 27 से 37, 62, 14, 76, 37 से 47, 67, 21, 70, 47 से 57, 37, 6, 43, 58 से 68, 16, 17, 34। योग 222, 67, 300। पृष्ठ संख्या 156। आयु के आधार पर सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम संबंधी अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 17 से 27 वर्ष आयु समूह की सर्वाधिक 56.66% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित हैं, जबकि 43.29% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं। 27 से 37 वर्ष आयु समूह की 81.57% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित हैं एवं 18.43% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं। 38 से 47 वर्ष आयु समूह की 73.75% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित हैं तथा 43.29% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं। 48 से 56 आयु वर्ष की 56.77% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित हैं एवं 13.96% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं। 56 से 67 आयु वह समूह के 56.77% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित हैं तथा 43.29% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं। जाति एवं सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों की भूमिका। भारतीय समाज में जाति एक प्रमुख कारक है जो विकास की प्रक्रिया से सतत रूप से जुड़ी हुई है। अध्ययन में चयनित समग्र उत्तर जातियों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण सारणी संख्या 7.4 में दिया गया है। पृष्ठ संख्या 157, सारणी संख्या 7.4, जाति एवं सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। जाति सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। योग सामान्य अधिक सामान्य 67, 36, 114। पिछड़ी, 63, 24, 87, अनुसूचित, 81, 18, 99, योग 222, 78, 300। जाति के आधार पर सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम संबंधी अध्ययन से अस्पष्ट होता है कि सामान्य जाति की 67.43% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित हैं, जबकि 31.57% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं। अन्य पिछड़ी जाति की 72.41% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित हैं एवं 26.59% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं। अनुसूचित जाति की 80.48% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित हैं तथा 18.19% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं। शिक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व संबंधी जन माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की जानकारी। शिक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व संबंधी जन माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की जानकारी का वर्गीकरण सारणी संख्या 7.5 में दिया गया है। पृष्ठ संख्या 158, सारणी संख्या 7.5। शिक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व जन माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की जानकारी। शिक्षा, संचार माध्यमों द्वारा पोलियो की खुराक पिलाने के लिए जागरूक करना, योग हाँ नहीं, निरक्षर अथवा साक्षर 18, 11, 29, प्राथमिक 61, 15, 76, हाई स्कूल 51, 23, 64, इंटरमीडिएट 61, 15, 76, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर 31, 14, 45, योग 222, 67, 300। शिक्षा के आधार पर सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम संबंधी अध्ययन से अस्पष्ट होता है कि निरक्षर अथवा साक्षर स्तर की 61.1% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम से परिचित हैं, जबकि 36.9% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं। प्राथमिक स्तर की 80.3% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम से परिचित हैं एवं 19.7% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों से परिचित नहीं हैं। हाई स्कूल स्तर की 67.9% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम से परिचित हैं तथा 31.9% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं। इंटरमीडिएट स्तर की 80.3% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम से परिचित हैं, जबकि 19.7% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की 67.9% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम से परिचित हैं एवं 31.1% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं। पृष्ठ संख्या 159, परिवार के स्वरूप के आधार पर सुरक्षित मातृत्व संबंधी संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की जागरूकता। भारत में सदस्य संख्या के आधार पर प्रमुख रूप से दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, संयुक्त एवं एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार सदस्य संख्या की दृष्टि से बड़े परंपरागत और जटिल अंतः गठबंधों वाले होते हैं। इस तरह के परिवार में स्वतंत्रता सीमित तथा पुरुषों का आधिपत्य होता है। यही कारण है कि संयुक्त परिवारों में महिलाओं की गतिशीलता एवं सामाजिक सक्रियता कम होती है, जबकि एकाकी परिवार जनसंख्या की दृष्टि से छोटे, आधुनिक एवं सरल अंतः गठबंधन वाले होते हैं। इस तरह के परिवारों में अधिक स्वतंत्र एवं पुरुषों का वर्चस्व कम होता है। इस प्रकार एकाकी परिवारों में महिलाओं की गतिशीलता एवं सामाजिक सक्रियता अधिक होती है। तात्पर्य यह है कि संयुक्त एवं एकाकी परिवारों में स्त्रियों की स्थिति में भिन्नता, स्वतंत्रता की मात्रा में अंतर तथा सामाजिक गतिशीलता एवं सक्रियता में अंतर होने के कारण परिवार के स्वरूप के आधार पर सुरक्षित मातृत्व संबंधी संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की जागरूकता का वर्गीकरण नीचे सारणी संख्या 6.7 में दिया गया है। सारणी संख्या 7.6 परिवार का स्वरूप एवं सुरक्षित मातृत्व के संबंध में जन माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। परिवार का स्वरूप संचार माध्यमों द्वारा पोलियो की खुराक पिलाने के लिए जागरूक करना। योग हाँ नहीं संयुक्त 122 47 169, एकाकी 100 31 131, योग 222 78 300। परिवार के स्वरूप के आधार पर सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम संबंधी अध्ययन से स्पष्ट होता है कि संयुक्त परिवार की 72.2% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम से परिचित हैं, जबकि 27.8% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम से परिचित नहीं है। पृष्ठ संख्या 160। एकाकी परिवार की 76.3% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम से परिचित हैं तथा 23.7% उत्तरदात्रियां सुरक्षित मातृत्व के संबंध में संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं। पृष्ठ संख्या 160। सरकारी चिकित्सालयों में मातृत्व एवं शिशु कल्याण हेतु मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनेस्को, भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा दूसरे अन्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों द्वारा मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की आम लोगों तक पहुँच बनाने के लिए ये सरकार एवं संगठन जनसंचार माध्यमों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी प्रसारित करती हैं। जनसंचार माध्यमों द्वारा इस संबंध में प्रसारित कार्यक्रमों के उत्तरदात्रियों में जानकारी को निम्नलिखित सारणी संख्या 7.7 में दिया गया है। सारणी संख्या 7.7। सरकारी चिकित्सालयों में मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी का विवरण। कार्यक्रम की जानकारी के प्रति दृष्टिकोण। आवृत्ति प्रतिशत हाँ 264 67, नहीं 36 32, योग 300 100। उपरोक्त सारणी संख्या 7.7 में दिए गए आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 67% उत्तरदात्रियों को सरकारी चिकित्सालयों में मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त हुई है, जबकि 12% उत्तरदात्रियों का कथन है कि उनको इसकी जानकारी संचार माध्यमों से प्राप्त नहीं हुई है। अतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 77% उत्तरदात्रियों को सरकारी चिकित्सालयों में मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त हुई है। जागरूकता अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से यह जानकारी प्राप्त की गई है कि राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रमानुसार टीकाकरण, आयरन की गोली का वितरण, स्वास्थ्य एवं पोषाहार की शिक्षा, स्तनपान के महत्व पर विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। क्या आपको इसकी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त हुई है? उनसे प्राप्त जानकारी को निम्नलिखित सारणी संख्या 6.7 में दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 161, सारणी संख्या 7.8। जागरूकता अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी का विवरण, कार्यक्रम की जानकारी, आवृत्ति, प्रतिशत जानकारी है 243, 81 जानकारी नहीं है 56, 19 योग 300, 100। सारणी संख्या 7.8 में दिए गए आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक 81 उत्तरदात्रियों को संयुक्त पोषाहार कार्यक्रमानुसार टीकाकरण, आयरन की गोली का वितरण, स्वास्थ्य एवं पोषाहार की शिक्षा, स्तनपान के महत्व पर विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान की जानकारी संचार माध्यमों द्वारा उनको प्राप्त हुई है। अंधता निवारण कार्यक्रम की जानकारी का विवरण। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से यह जानकारी प्राप्त की गई है कि अंधता निवारण योजना के अंतर्गत लेंस प्रत्यारोपण समेत मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया है। क्या आपको इसकी जानकारी संचार माध्यमों से मिली है? उसे प्राप्त जानकारी को निम्नलिखित सारणी 7.9 में दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 162, सारणी संख्या 7.9, अंधता निवारण निःशुल्क योजना की जानकारी का विवरण। योजना की जानकारी, आवृत्ति, प्रतिशत जानकारी है 202, 67, जानकारी नहीं है 96, 32.67, योग 300, 100। उपरोक्त अध्ययन के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश 67.33% उत्तरदात्रियों के अनुसार अंधता निवारण योजना के अंतर्गत लेंस प्रत्यारोपण समेत मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। इसको इसकी जानकारी संचार माध्यमों से मिली है, जबकि 32.7% उत्तरदात्रियों के अनुसार अंधता निवारण योजना के अंतर्गत लेंस प्रत्यारोपण समेत मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। उनको इसकी जानकारी संचार माध्यमों से नहीं मिली है। यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 67.33% उत्तरदात्रियों को अंधता निवारण योजना के अंतर्गत लेंस प्रत्यारोपण समेत मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। उनको इसकी जानकारी संचार माध्यमों से मिली है। यौन संक्रमित रोगों के निःशुल्क परामर्श एवं निदान की जानकारी का विवरण। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से यह जानकारी प्राप्त की गई है कि रजत रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत यौन संक्रमण से होने वाले रोगों का निःशुल्क परामर्श चिकित्सा उपलब्ध है। क्या आपको इसकी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा मिली है? उसे प्राप्त जानकारी को निम्नलिखित सारणी संख्या 7.10 में दर्शाया गया है। सारणी संख्या 7.10, यौन संक्रमण से होने वाले रोगों का निःशुल्क परामर्श चिकित्सा की जानकारी का विवरण। यौन संक्रमण परामर्श चिकित्सा की जानकारी, आवृत्ति, प्रतिशत जानकारी है 215, 71.67, जानकारी नहीं है 85, 27.33, योग 300, 100। पृष्ठ संख्या 163, सारणी संख्या 7.1 के आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश 61.67% उत्तरदात्रियों को रजत रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत यौन संक्रमण से होने वाले रोगों का निःशुल्क परामर्श चिकित्सा उपलब्ध है। इसकी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा मिली है, जबकि 27.33% उत्तरदात्रियों को रजत रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत यौन संक्रमण से होने वाले रोगों का निःशुल्क परामर्श चिकित्सा उपलब्ध है। इसकी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा नहीं मिली है। अतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 71.67% उत्तरदात्रियों को रजत रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत यौन संक्रमण से होने वाले रोगों का निःशुल्क परामर्श चिकित्सा उपलब्ध है। इसकी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा मिली है। एचआईवी एड्स नियंत्रण एवं निःशुल्क उपचार संबंधी जानकारी का विवरण। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से यह जानकारी प्राप्त की गई है कि राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एचआईवी एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को कम कीमत पर चिकित्सा उपलब्ध है। क्या आपको इसकी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा मिली है? उससे प्राप्त जानकारी को निम्नलिखित सारणी संख्या 7.11 में दिया जा रहा है। सारणी संख्या 7.11 एचआईवी एड्स व्यक्तियों को कम कीमत पर चिकित्सा की जानकारी का विवरण। कम कीमत पर एचआईवी एड्स चिकित्सा की जानकारी आवृत्ति प्रतिशत जानकारी है 223.64, जानकारी नहीं है 77.2567 योग 300/100। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों के दृष्टिकोण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 64.33% उत्तरदात्रियों को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एचआईवी एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को कम कीमत पर चिकित्सा उपलब्ध है। उनकी इस जानकारी संचार माध्यम, जबकि 25.67% उत्तरदात्रियों का मत है कि राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एचआईवी एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को कम कीमत पर चिकित्सा उपलब्ध है। उनकी इस जानकारी संचार माध्यम से प्राप्त नहीं हो पाती है। पृष्ठ संख्या 164। अतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 64.33% उत्तरदात्रियों के अनुसार राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एचआईवी एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को कम कीमत पर चिकित्सा उपलब्ध है। उनकी इस जानकारी संचार माध्यमों से होती है। आयोडीन प्रयोग संबंधी जागरूकता में संचार माध्यमों के प्रभाव की जानकारी। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से यह जानकारी प्राप्त की गई है कि आयोडीन शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व हैं। सामान्य शरीर व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 100 से 150 मिलीग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्या आपको इसकी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा मिली है? उनसे प्राप्त प्रतिक्रियाओं को निम्नलिखित सारणी संख्या 7.12 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। सारणी संख्या 7.12, आयोडीन की आवश्यकता संबंधी जागरूकता का वर्णन। जागरूकता की स्थिति आवृत्ति प्रतिशत हाँ 169/63, नहीं 111/36 योग 300/100। सारणी संख्या 7.12 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 63% उत्तरदात्रियों का कथन है कि आयोडीन शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व है। सामान्य शरीर वृद्धि के लिए प्रतिदिन 100 से 150 मिलीग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसकी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा मिलती है, जबकि 37% उत्तरदात्रियों का कथन है कि आयोडीन शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व है। सामान्य शरीर वृद्धि के लिए प्रतिदिन 100 से 150 मिलीग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसकी जानकारी संचार माध्यमों से नहीं मिलती है। अतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 63% उत्तरदात्रियों को इसकी जानकारी जनसंचार के माध्यम से प्राप्त होती है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की जानकारी। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से यह जानकारी प्राप्त की गई है कि मानसिक स्वास्थ्य कार्य के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध है। क्या आपको इसकी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा मिली है? उनसे प्राप्त जानकारी को निम्नलिखित सारणी संख्या 7.13 में दर्शाया गया है। सारणी संख्या 7.13 मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की जानकारी। दृष्टिकोण आवृत्ति प्रतिशत हाँ 184/61.33, नहीं 116/36.67 योग 300/100। उपरोक्त अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 61.33% उत्तरदात्रियों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य कार्य के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। इसकी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा मिली है, जबकि 36.36% उत्तरदात्रियों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य कार्य के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है और इसकी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा नहीं मिली है। अतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 61.33% उत्तरदात्रियों को मानसिक स्वास्थ्य कार्य के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, इसकी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा मिली है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण एवं उपचार कार्यक्रम हेतु जनसंचार साधनों द्वारा जानकारी का विवरण। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से यह जानकारी प्राप्त की गई है कि जन संप्रेषण द्वारा क्या आपको राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के विषय में जानकारी संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त हुई है। उनसे प्राप्त जानकारी को निम्नलिखित सारणी संख्या 7.14 में दर्शाया गया है। सारणी संख्या 7.14 जन संप्रेषण सूचनाओं द्वारा राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम संबंधी जानकारी। विचार आवृत्ति प्रतिशत हाँ 167 55.65, नहीं 133 44.35, योग 300 100। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों के विचार से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 55.65% यह मानते हैं कि उनको जन संप्रेषण द्वारा क्या आपको राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के विषय में जानकारी संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त हुई है, जबकि 44.35% उत्तरदात्रियों को जन संप्रेषण द्वारा आपको राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के विषय में जानकारी संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सर्वाधिक 55.65% उत्तरदात्रियों को जन संप्रेषण द्वारा आपको राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के विषय में जानकारी संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त हुई है।